Birader selam. Ramazan mübarek ki amel amel hep. Üntis ko canlı bayrağı inşallah canlı. Or üntis üntis ko ayrı. चांद का फैसला होने में बाद मरतबा देर हो जाती है, वो उसकी वजह से परेशान नहीं है सर, या तो जल्दी निकाले चांद को या उसको कल को ऐसे मौका दो, मैं जल्दी निकालना हमारे हाथ में है ना मौका करना हमारे हाथ में। अगर ये मीडिया नहीं होता तो निस्पतन आसान था, मीडिया होने की वजह से क्रेट एरिया बढ़ा दिया गया, पूरा अमेरिका है, बारबाडोस भी चले गए वहां तक, वो भी इसमें शामिल कर लिया, कनाडा भी इसमें शामिल कर लिया। ये तो उसूल ये है कि शिकागो वाले शिकागो में चांद देखे, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो छुट्टी, उसूल ये है। तरीका ये है कि न्यूयॉर्क वाले न्यूयॉर्क में चांद देखे, चांद नजर आ गया तो रोजा शुरू करे, नहीं नजर आया तो 30 दिन मुकम्मल करे शाबान के। जिस शहर के लोग हैं उस शहर के लोगों पर वहां का चांद अप्लाई होता है उसूलन, और उससे जो फर्क हो जाता है उस फर्क को शरीयत में नापसंद नहीं किया गया। बाजू चीजों का फर्क नापसंद होता है, बाजू चीजों का फर्क नापसंद नहीं होता। एक दिन रमजान शुरू होना पूरे मुसलमानों का, एक दिन ईद होना पूरे मुसलमानों की, ये कोई इस्लामी उसूल नहीं है, जरूरी नहीं। जैसे हम यहाँ जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं तो सारे दुनिया के मुसलमान जुमा की नमाज पढ़े, ये कोई जरूरी नहीं है। कहीं रात ही हो रही है तो ठीक है, जहां रात हो रही सो जाओ तुम लोग, तुम जुमा जुम्मा थोड़ी पढ़ना है, तो कल पढ़ोगे तुम या पढ़ चुके हो, वैसी चीज है। हमारी इबादतें हैं, रोजा भी इबादत है, ईद भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, तरावी भी इबादत है, तो इबादतें इबादतों के जो उसूल जाबते हैं वो पूरी दुनिया के एतबार से हैं। गुरु पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के नबी हैं, तो उनके जो अहकाम और मसाइल है सारे आलम के एतबार से हैं। किसी खास मुल्क, किसी खास नस्ल, किसी खास कौम, किसी खास इलाके के लोगों के लिए नहीं है, इसलिए ऐसी चीजों में बहुत फर्क होगा। चलिए देखिए कि इस फर्क की वजह से कोई मसला नहीं पड़ता, इसलिए इसमें उलझना नहीं चाहिए ज्यादा। अरे वहां वालों ने ये कर दिया, सऊदिया वालों ने तो देख लिया, इंग्लैंड वालों ने तो देख लिया, कोई देख लिया, देख लिया, नहीं देख लिया तो नहीं देख लिया, बोले वहां पर छोड़ो इस मसले को, आपको क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा कि शुरू करना है तो शुरू करना है, उन्होंने कहा नहीं करना है तो नहीं करना है। जब पूर्व जवाब से कोई तरह नहीं आती है तो असल में कैलिफोर्निया का इंतजार करते हैं, वहां दो ढाई घंटे के बाद होती है मगर उसमें जैसे तो वहां वो लोग देखना, फिर वो लोग डिसाइड करना वहां के अलावा, फिर वो इतना हमारे पास होना, फिर हमें ऐलान करना, इसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है। लेकिन गुजश्ता से इतना ज्यादा ताखीर इस वजह से नहीं हो रही कि बारबाडोस को भी शामिल कर लिया, और बारबाडोस में जो है अमूमन मतदा भी साफ होता है, रिजर्वेशन भी कुछ इसका ऐसा है कि अगर चांद ऐसा नजर आ ही जाता है, तो उस वजह से ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता। कहीं पर जो भी है बताया आपको इसलिए गया है कि रमजान शुरू होगा चांद से ही, रमजान खत्म होगा चांद से ही, ये एक इस्लामी उसूल है, और इस उसूल की रोशनी में उलमा किराम जो अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला उसी के मुताबिक हमको भी अमल करना है। उलमा की रहबरी में उनके फैसले से जो आदमी दीन पर चलेगा वो दीन पर चलेगा, उलमा की रहबरी में उनके फैसले के बगैर जो आदमी दीन पर चलेगा वो दीन पर नहीं चलेगा, वो नफ्स पर चलेगा, बल्कि बहुत मुमकिन है कि उसका दीन अल्लाह के यहां मोतबर ही न हो, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी अपने ख्वाहिश नफ्स के एतबार से चला और वो शरीयत के मुआफिक रहा तो भी एतबार नहीं है, इतनी नाजुक चीज है वो, सर अल्लाह ताला की बंदगी है तरह। तो जो उलमा किराम की रहबरी है वो मेन चीज है इस मामले में, हाँ उनके इखलास में एतमाद होना चाहिए, वो मुखलिस हों, उनके इल्म पर एतमाद होना चाहिए कि इल्म सही है, तकवे पर एतमाद होना चाहिए कि भाई से मजमू ही सब शरीयत के पाबंद हैं, वो चीजें तो जरूरी होती है, मगर मसला जो है हमेशा याद रखो उलमा के बताने से तय हुआ करता है। मसला कुरान और हदीस का ही नाम है, लेकिन कुरान और हदीस में क्या है वो मसले से तय होता है, मसले में बताया जाता है। ऐसे मसला मेरे बुजुर्गों जैसे अर्ज किया गया गुजश्ता भी, तरावी का है, रोजे रखने का है, तरावी पढ़ने का है, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी जान से भी पेश कर रही है, माल से भी पेश कर रही है। अल्लाह ने अपनी बंदगी जाहिर करने के लिए जान से खासतौर पर दो चीजें लगाई हैं, एक नमाज और एक रोजा। नमाज जो है ये वजूदी इबादत है, कोई काम करना होता है ऐसी भी इबादत करो, और रोजा जो है वो अदमी इबादत है, कि कोई काम अल्लाह के लिए नहीं करना होता है। नमाज दिन में 5 मरतबा फर्ज है, उसकी उतनी ही अहमियत है जितनी उम्र में 1 मरतबा हज की अहमियत है। उम्र में 1 मरतबा हज की जितनी अहमियत है, दिन में 5 मरतबा नमाज की उतनी ही अहमियत है, हर नमाज की उतनी अहमियत है, क्योंकि नमाज और हज इक्वल है फर्ज होने में। 5 मरतबा नमाज 5 हज के बराबर। रोजा उतनी ही अहमियत है उसकी, अरकान दीन में से है, अरकान इस्लाम में से है, बुनियाद इस्लाम वाला खम्स से 5 चीजें तो इस्लाम की बुनियादों में से है, इस्लाम की तामीर इन्हीं 5 चीजों से हुई। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इजहार करना, दिल में रखना, वो तो ईमान है, उसका इजहार ही इस्लाम है। फिर नमाज पढ़ना पाबंदी से, तो आम दिनों में भी नमाज पढ़ना है और 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, और रमजान मुबारक में खुसूसियत से पढ़नी है कि कोई नमाज कजा ना होने पाए। बाद लोगों को ये होता है कि रोजा तो रख लिया लेकिन नमाज कजा हो रही, अरे नमाज जब रोजा रख लिया तो नमाज कैसे कजा हो रही, नमाज भी पढ़नी है पाबंदी से, कोई नमाज कजा ना हो, कोशिश ये करे बंदा कि कजा ना हो, वक्त पर अदा हो जाए। अदाए कामिल ये है कि नमाज मस्जिद में हो, जमात के साथ हो, सफेउल्लाह के साथ हो, तकवीरउल्लाह के साथ हो, अदाए कामिल, मगर उसमें जिस कदर कमजोरी होती जाती है वो अदाए नाकिस होती जाती है, लेकिन हो जानी चाहिए और अदा होनी चाहिए। कजा नहीं, कजा कहते हैं वक्त के खत्म हो जाने के बाद अदा करने, वक्त शुरू होने से पहले ना कजा ना अदा, वक्त शुरू होने से पहले ना नमाज अदा होती ना नमाज कजा होती, वो नमाज ही नहीं होती, नफिल में जाता है। फर्ज करो जुमा का वक्त शुरू होने से पहले किसी ने जुमा पढ़ लिया, नफिल पढ़ ली उसने, उस दिन दौर की कजा होगी, जुमा छूट गई उसे। ईशा की नमाज के वक्त शुरू होने से पहले ईशा पढ़ ली, तभी तरावी भी पढ़नी है, देर हो जाएगी, नमाज का वक्त शुरू होने से पहले ईशा पढ़ लो, तो उस दिन की नमाज कजा हो जाएगी। तो वक्त से पहले तो ना कजा होती ना अदा होती। इन सलात कान काबिल मोमिन किताब मौकूता, नमाज ईमान वालों पर वक्त के साथ फर्ज है, तो वक्त आने से पहले नहीं होती, वक्त आने के बाद अगर वक्त निकल गया तो कजा हो जाएगी, नमाज पाबंदी से अदा होना है और बगैर कजा हुए के अदा होना है, और उम्र भर के लिए अदा होनी है, और रमजान मुबारक में तो खास एहतमाम हो। उसके बाद रोजा है, कि रोजे मामूली मामूली बहानों से नहीं छोड़े जाते, रोजा कुर्बानी है बंदे की, रोजा जान से इबादत करना है, और जान भी ऐसा कि महबूब चीज को जो कि जायज है हमारे लिए अल्लाह के लिए छोड़ के इबादत का इजहार करना है। खाना अल्लाह ने हलाल किया है, पीना अल्लाह ने हलाल किया है, शादी हो गई है तो बीवी से ताल्लुकात अल्लाह ने हलाल किए हैं, अल्लाह पाक ने कहा कि ये वक्त से ये वक्त तक इन तीनों चीजों से रुकना है, कब से, सुबह से लेके, सुबह साजिब से लेके सूरज के गुरूब होने तक, ना खाना पेट में कोई चीज आए, ना खाने के रहेंगी कोई चीज, ना पानी के रहेंगी कोई चीज, ना दवा के रहेंगी कोई चीज, और ना आदमी अपनी बीवी से फायदा उठाए, हम बिस्तर न हो सके, इन तीन चीजों से अपने आप को दिन में रोकना। और दिन से मुराद है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब से दिन शुरू होता है, और वो शुरू होता है इस्लाम में सुबह साजिब से, और गुरूब के वक्त खत्म, गुरूब जब गुरूब हो जाए जब खत्म होता है उस वक्त तक रोक के रहना अपने आप को। और जो इसकी हकीकत है यानी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए रोकना, तो अल्लाह की रजा जो है वो गुनाहों से कायम नहीं रहती, इस वजह से गुनाहों से भी खास तौर पर इन औकात में अपने को रोकना, गीबत से, चोरखोरी से, तकलीफ पहुंचाने से, माल में नाजायज, माल कमाने में नाजायज तदाबीर को इख्तियार करने से, इन सब चीजों से भी रोकना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो غیبت کرنے والے کو قے کرا دی اپنے سامنے. دو عورتیں تھیں, ان کو بہت روزہ لگ گیا اور مرنے کے قریب ہو گئے روزے میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا کہ ایسی حالت ان کی ہو گئی ہے کہ ان کا روزہ توڑوا دیں. آپ نے فرمایا کہ کٹورا لاؤ. کٹورا لایا گیا, برتن لایا گیا, کہا اس میں قے کرو. انہوں نے قے کیا تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. تو میں اس کی وجہ سے روزہ رکھ رہا تھا. یہ غیبت تھی. غیبت کیا ہے؟ مسلمان بھائی کا, مسلمان وہ جو مر چکا ہو اس بھائی کا گوشت کھانے. تو تم غیبت کر رہی تھی تو روزہ تو لگے گا. پھر یہ جو پیٹ میں جا رہا تھا جب سے تمہارے, آپ نے فرمایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے معاملات کرا کے امت مسلمہ کو دکھایا گیا کہ دکھتا نہیں لوگوں کو لیکن حقیقت اس کی یہ ہے, اور دکھنے کا وقت بھی آ جائے گا. آخرت میں تو دکھنے والی ہے یہ سب چیزیں. دنیا میں دکھا دیا گیا تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمونہ بتا دینے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دے دینے سے مسلمان کو یقین آ جاتا ہے. تو یہ کافی ہے, ہر ایک کو نظر آنا ضروری نہیں. یقین آ گیا مسلمان کو, یہ کافی. تو دن بھر سے روزے میں بچنا ضرورت ہی نہیں. اور علماء کرام نے بڑی اچھی بات فرمائی. حضرت ثانی نے لکھا ہے کہ غیبت سے بچنے کا علاج اس کے علاوہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا اچھا تذکرہ کرنے سے بھی بچیں. عجیب بات ہے, اچھا تذکرہ کرنے سے بچنے میں غیبت بچے. غیبت سے کیسے بچیں گے؟ فرمایا کہ ہوتا اصل میں یہی ہے کہ پہلے آدمی اچھا تذکرہ کرتا ہے, پھر بعد میں مگر لاتا ہے. اور آپ بڑے اچھے ہیں, ایسا کیا انہوں نے, مگر ذرا ایسا ہو گیا وہاں. مگر کے بعد میں پھر ان کے وہ کمزور پہلو وہ ذکر کرنے میں آدمی انجوائے کرتا ہے. اور میرے دوستو, دنیا میں جتنے زہر پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ انسان کے گوشت کا زہر ہوتا ہے. اور غیبت میں انسان کا گوشت ہی جاتا ہے. اور یہ زہر انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے نہ کسی کا اچھا تذکرہ, نہ کسی کا برا تذکرہ. رمضان کا زمانہ ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرو. قرآن پاک کی تلاوت کا سیزن ہے. اور جتنا آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے اتنا جی لگے گا, اور زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ لیں گے. عام دنوں میں جو آدمی بوپارا نہیں پڑھ پاتا وہ رمضان المبارک میں دو دو تین تین پارے آسانی سے نکال لیتا ہے. اور دیکھ کے پڑھو, اور اس چکر میں مت پڑھو کہ اس کی میننگ کیا ہے. یہ ہر ایک کے وقت کی چیز نہیں ہے. کوئی خاص خاص لوگ ہیں جن کو دعوت خاص اور مناسبت ہے علماء کے, علماء کی صحبتیں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں بزرگوں کی, اور دین سے اچھے خاصے واقف ہوئے تھے. وہ لوگ ترجمہ پڑھیں کسی عالم کی اجازت لے کر, وہ صحیح ہے. سب کا کام نہیں ہے, سب یہ خالی دیکھ کے پڑھو. قرآن شریف کی تلاوت کثرت سے کرو. قرآن شریف کے جو میننگ اور مطالب ہیں وہ علماء سے سنتے ہو, اور اتنا ان پر بھروسہ کرو کہ وہ جو قرآن پاک کے میننگ اور مطالب ہیں وہی بتائیں گے. اب ہم اگر علماء پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ علماء پہ اس سے ٹرسٹ نکال کے جب ظاہروں پہ ٹرسٹ کرو گے تو پھر وہ قرآن تھوڑی رہے گا بھائی, تو اور گڑبڑ ہو جائے گی. جب عالم آپ کے نظر قابل ٹرسٹ نہیں ہے تو ظاہر کیسے قابل ٹرسٹ ہوگا؟ اور جب ظاہر قابل ٹرسٹ نہیں ہے تو جو ٹرانسلیشن ہے وہ جاہلوں کا بہت ہے اور گمراہوں کا بہت ہے, وہ کیسے قابل ٹرسٹ ہو جائے گا؟ تو پھنس جاؤ گے بلا وجہ میں. خود اتنی عربی نہیں آتی کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی بات کو گرامر سے سمجھ لو, اس کے فن سے بات اتنی نہیں ہے تو ہوگا نہیں. وہ کام بھروسہ ہی کرنا ہے. جب بھروسہ ہی کرنا ہے تو علماء پہ کر لو, ان سے سن لو کہ جن کی باتیں کیا ہے بتا دو. اور ایسے دلائل پر بھی اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے دین کے معاملے میں جو مشکوک اور مشتبہ ہوتے ہیں. مشکوک اور مشتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہر قسم کے سورسز کو یوز کرتے ہیں, جیسے بعض ایسے چینل ہیں, ٹی وی چینل ہیں, کہ انہوں نے علماء کو بٹھانا شروع کر دیا ہے, اس میں لوگ وہ فتوے دیتے رہتے ہیں, تو وہ سب کو سب مسلک والوں کی ترجمہ نہیں کراتے. وہ کسی کو ناخوش کرنا, ان کو چائنا چلانا ہے, دین نہیں چلانا ہے. ان کو اپنا پروگرام چلانا, اپنے پیسے بنانے ہیں, ان کو دین نہیں چلانا ہے. کیونکہ آپ کا ٹیسٹ دین بھی ہے, اس وجہ سے وہ دین کو پیش کرتے ہیں. تو وہ دین سے دنیا کما رہے ہیں, تمہیں دین کو بیچ کے دنیا کما رہے ہو. اور اس دین کو مسلمانوں میں سب سے اچھے پایا جاتے ہیں سب کی ترجمانی. کبھی کسی کو بٹھا دیا, کبھی کسی کو بٹھا دیا, کبھی کسی کو بٹھا دیا, کبھی کسی کو بٹھا دیا. اب جو سننے والا ہے بےچارا, اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ کہاں کا کیا کیا کنفیوژن ہے اور کہاں پر کیا گمراہی. اس لیے کبھی ان چینلوں کے چکر میں نہیں جانا, اس سے دین نہیں سیکھنا. چینلوں کے ذریعے سے دین سیکھنے کے مقابلے میں وہ جو گناہ ہے اس کے مقابلے میں کسی ڈرامے کا گناہ اس سے کم ہے. یاد رکھ لو, किसी फिल्म का गुनाह उससे कम है। फिल्म गुनाह की चीज है, ड्रामा गुनाह की चीज है, कोई अच्छा काम नहीं होता। लेकिन ऐसे जरा से दीन सीखना उससे ज्यादा बड़ा गुनाह है, ये हम आपको कैसे समझा रहे हैं, कभी कर रही है। वैसे गुनाह का शौक हो रहा तो ड्रामा लेकर देखता था हमको, और अल्लाह से माफी मांग। गुनाह को शौक की चीज नहीं है, गुनाह करना नहीं चाहिए, लेकिन जब किसी बात की अहमियत समझानी होती है तो जिस अंदाज से बंदे को समझ में आ रहा वो बताना होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बताना खासा या ये फतवा नहीं दे रहा मैं, गलत है, ऐसे सोर्सेस में नहीं जाया जाता। इस वजह से ये है कि जो दीन के मसाइल हैं, अहकाम हैं, नमाज के, रोजे के, ज़कात के, हज के, तहारत के, वजू के, मीराज के, जितने भी मसले मसाइल और अहकाम दीन हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं माशाल्लाह, उनसे आप पूछें और उनसे फतवा लें और उस पर अमल करके कुरान पाक की तिलावत करें। रमजान मुबारक का महीना कुरान पाक की तिलावत का महीना है, रात और दिन सुनने में भी पढ़ने में भी एहतमाम हो, और तरावीह में कुरान पाक का सुनना सुन्नत है। तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है, और 20 तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है, और तरावीह 20 से कम नहीं होती। बहुत मरतबा ये मकबूल आपसे अर्ज किया गया है, 20 से कम को तरावीह कहते ही नहीं है। और 20 पढ़ना है और उसमें कुरान शरीफ का सुनना है, कुरान शरीफ का सुनना अलग सुन्नत है और 20 तरावीह पढ़ना अलग सुन्नत है। 20 तरावी पढ़ो और कुरान पाक उसमें सुनो, एक कुरान पाक का मतलब सुन ले बंदा और उसके बाद में चाहे अंतरा से पढ़ ले। रात की इबादत रही, रमजान की खास तौर पर तरावी अलग इबादत है और क़ियामुल लैल अलग है। क़ियामुल लैल में एक बात बता दूं मैं आपको, तरावी के अलावा जो क़ियामुल लैल है अहनाफ के नजदीक जमात के साथ मकरूह तालीमी है, जमात के साथ नहीं पढ़ना है, इनफरादी तौर पर पढ़नी है। क़ियामुल लैल इनफरादी चीज है, इज्तिमाई चीज नहीं होती, और वो तरावी के अलावा होती है। वो क़ियामुल लैल तहज्जुद को कहते हैं, असल में तहज्जुद इनफरादी होती है, इज्तिमाई नहीं होती। बाद में उसमें कुरान शरीफ सुनने की आदी होते हैं, तहज्जुद में कुरान शरीफ सुन लेते हैं, जरूरत नहीं है आपको जमात के साथ तहज्जुद में कुरान शरीफ सुनने की जरूरत नहीं है। मसले की रियायत के साथ आमाल कमाए जाते हैं, खतरनाक कमाए जाते हैं। मसले की रियायत नहीं करेंगे तो आपको क्या पता प्रभाव जाएंगे, सवाब ही नहीं मिलने वाला है। तो क़ियामुल लैल अलग चीज है, तरावी अलग चीज है, तरावी सुन्नत है और वो 20 रकात होती है, वो जमात के साथ होती है। अगर जमात से मौका नहीं हुआ तो तन्हा भी होती है, मर्द पर भी होती है, वो औरत पर भी होती है। और तरावी में कुरान पाक का सुनना और एक सुन्नत है, अलग सुन्नत है। लेकिन अगर कुरान पाक न सुना जा सके तो अलमतरा से भी पढ़ा जा सकता है। और क़ियामुल लैल अलग चीज है और वो तन्हा होता है, क़ियामुल लैल करने वाले को तरावी का सवाब नहीं मिलता। नमाज के अंदर इसका भी एहतमाम हो, चाहे वो दिन की नमाजें हों, रात की नमाजें हों, फिर रोजा है, रोजे के लिए आदमी को शौक और जज्बे से कुर्बानी के जज्बे के साथ में चलना है। ये जाहिर है कि जाप करते हुए, और जाप भी किस किस किस्म के होते हैं हमारे भाइयों के, इंतहाई मुश्किल जाप भी होते हैं, थकाने वाले भी होते हैं, परेशान कुन भी होते हैं। यहाँ की जाप वैसे भी आदमी को थकाने वाली होती, घबराए नहीं आदमी। और बुजुर्गों ने फरमाया कि रोजे में अगर आप तज़किरा नहीं करेंगे तो रोजा लगेगा नहीं आपको, और तज़किरा करेंगे, जितना तज़किरा करेंगे उतना रोजा हो तो दिन बड़ा लंबा है, वो बड़ा दिन बड़ा लंबा है, और वही बुरी तेज धूप है, और बड़ी गर्मी है, और भूख प्या प्या कर, जितना ज्यादा तज़किरा होता है उतना रोजे की फीलिंग होती है। और आप भूख आपने जहन बना लिया अपना कि मगरिब से पहले सूरज गुरु होने से पहले न कुछ खाना है न कुछ पीना है, अपने काम में लगे, फुर्सत हुई कुरान पाक की तिलावत में, जिक्र में, इस्तिग़फ़ार में, दुरूद शरीफ में, तस्बीह में, और नहीं काम का होता है तो काम में लगे रहे, ऑफिस का काम है ऑफिस में लगे, टेप का काम है टेप में, कंप्यूटर का काम है कंप्यूटर में, दुकान का काम है दुकान में, काम में लगा रहे बंदा, जिक्र न करे कुछ भी महसूस नहीं होता। और आपको पता ही है कि यहाँ तो वैसे भी इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती नहीं जितनी इंडिया पाकिस्तान में होती है, इस वजह से लगता नहीं रोजा। तो रोजा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो यहाँ पर अमल में नहीं आ सकता, चाहे लंबा हो चाहे मुख्तसर हो सकता है, उतना हिम्मत से काम ले। मामूली मामूली उजरों की वजह से रोजाना छोड़ा जाए मेरे भाई, थोड़ी सी बीमारी की वजह से रोजाना छोड़ा जाए, जब तक डॉक्टर की तरफ से तजवीज न करे, जब तक कि खुद भी तजुर्बा न कर ले कि हाँ भाई ये मेरे काबू की चीज नहीं है। जैसे शुगर पेशेंट वगैरह है रोजा नहीं रखा जाता, रोजा रख लें आप, जब देख लें असर के बाद का वक्त مغرب کے قریب کا وقت کہ روزہ نہیں رکھا جا سک رہا, برداشت سے باہر ہو گیا تو ٹھیک ہے توڑ لیں, کفارہ نہیں ہوگا اس میں. کفارہ بغیر عذر کے روزہ توڑنے پر ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا رکھے کہ میں نہیں رکھ پایا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں میں نہیں رہ سکتا ایسی بات نہیں ہے, ہر شوگر پیشنٹ نہیں رہ سکتا یہ بات نہیں ہے. اور ایسے بعضوں کی دوسری بیماریاں ہیں, جس کو بھی جو بھی بیماری ہے معمولی سے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا ہے, واقعہ تو عذر واقعہ تو عذر ہے, شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے. ایسے خواتین کا بھی ذہن بنایا جائے, عورتیں بھی بعض مرتبہ معمولی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑوا دیتی, بچوں کا ذہن بنایا جائے, چھوٹے چھوٹے بچوں کا روزہ رکھنا اس کی عادت ڈال جائے, بچہ کمزور ہو جائے گا. یہاں پہ کون کمزور ہوتا ہے بھائی, کوئی کمزوری اندوری نہیں ہوتی. آپ بے فکر رہ کر روزہ رکھوائیے, ان کو ہمت دلائیے, جبر نہ کیجیے, زور نہ ڈالیے بچے بھی چھوٹے بچے پہ. لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کو رمضان میں پکڑ کے لایا گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھا ہوا, آپ نے اس کی پٹائی کا حکم دیا. فرمایا کہ تم وقت تم کیسے لوگ ہو, تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, ہمارے پاس تو دودھ پیتے بچوں کو ان کی مائیں رمضان میں دودھ نہیں پلاتی جب تک کام نہیں ہو جاتی. صحابہ کے اندر یہ انداز تھا, دودھ پیتے بچے کو دن میں روزہ نہیں پلاتی, دودھ نہیں پلاتی تھی, اس طرح پلاتی تھی, کچھ نہیں ہوتا. اور ہم کو ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے, ہم کو ایسا کرنا بھی نہیں ہے, لیکن لوگ ایسا بھی کرتے تھے اور وہ سنبھال جاتے تھے, سہار جاتے تھے, ان کے بچے بھی ویسے نورانیت والے تھے, سنبھال جاتے تھے. ہمیں یہ تو نہیں کرنا ہے, یہ دودھ پیتے بچے کے بارے میں یہ حکم نہیں دینا, ترغیب نہیں دینا ہے. لیکن بچہ چھ سال کا, سات سال کا, آٹھ سال کا اگر بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ضرور روزہ رکھائیں, بچی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اپریشیٹ کریں اس کو اور روزہ رکھائیں. ابھی سے عادت ڈالیں ان کو روزے کی, ابھی سے عادت ڈالیں قرآن پاک کی تلاوت کی, ابھی سے عادت ڈالیں نماز پڑھنے کی. خود نے فرمایا کہ جب سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو, اور جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے نماز میں سستی کرنے پر سختی کرو. بغربوں ادا بلغوا عشرا, جب دس سال کے ہو جائیں تو پھر نماز میں ان کو سختی کرنا ہے, حالانکہ فرض تو ابھی کوئی دیر کے بعد ہی ہوگی. اور میرے دوستو یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, بڑی برکتوں والا مہینہ ہے, بہت رحمتوں والا ہے, مغفرتوں والا ہے, اس کو میرے نار والا مہینہ ہے, کوششوں کا ہے. تو اس وجہ سے خاص طور پر آدمی اس کی جدوجہد کرے, نمازوں کا پورا اہتمام, روزوں کا پورا اہتمام, تراویح کا پورا اہتمام, صحیح وقت پر پڑھنے کا اہتمام, روزہ صحیح وقت میں سحری کیا جائے, صحیح وقت میں افطار کیا جائے, جس جو اس سلسلے میں اوقات وغیرہ جس سے پہلے بھی گفتگو آپ کے سامنے آئی ہے اس کو مضبوط رکھا جائے. تھوڑے سے دن آدمی کو محنت مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. آخر کی بات, آخر میں ایک بات کی اپنی بات ختم کر ذہن سے نکل گیا تھا کہ اس وقت جو پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے خاص طور پر جو صورت حال ہے اس کے لیے اسپیشل دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ خاص رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو ہٹا لے امت مسلمہ سے. ہمیں ضرور کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. میرے دوستوں کو غور کرنے کی بات ہے کہ کیا امت مسلمہ لوز کر رہی ہے, کیا غفلت ہم سے ہو رہی ہے, بہت بڑی غفلتیں ہو رہی ہیں, اللہ معاف کرے. تو حق تعالیٰ شانہ یہ جتنے پریشان حال ہیں ان کے لیے بہتر نظم فرما دے اور مخرج نکال دے, راستہ بنا دے ان کے لیے, اور جتنے زیادہ ہمدردی کی جا سکتی ہو, مدد کی جا سکتی ہو, دام درمے سکون جس طریقے سے بھی, اس میں بھرپور حصہ لینے کی کوشش کیجیے. اور یہاں دور بیٹھ کے آدمی سب سے زیادہ دعاؤں کے سہارے پہ ہی زیادہ کام کر سکتا ہے. خاص طور پر دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر اپنا فضل خاص فرمائے, اور پوری مسلم کنٹریز کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا, کرم کا, معافیت کا, سہولت کا, آسانی کا معاملہ فرمائے. Thank you.